शांति, ओम शांति। कल सभी ने बाबा की अव्यक्त बोली सुनी, सवेरे भी सुनी फिर शाम को भी सुनी, तो डबल डोज मिल गया। सवेरे होली पर थी, थोड़ा बहुत होली पर सुनाया बाबा ने, शाम को भी सुनाया लेकिन भिन्न रूप से। तो कल शाम की मुरली का सार क्या था? मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करें, मनसा सेवा। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करें, शुभ भावना शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो सच्ची होली मनानी है, होली भी आ रही है 13 तारीख 14 तारीख, जलाने की मनाने की। तो होली माना, सब कुछ पुराना स्वाहा। तो आज बाबा ने विशेष रूप से सतो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहेंगे उस पर स्पष्ट किया है। मम्मा तो पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताती थी, पुरुषार्थी किसको कहेंगे? पुरुषार्थी वो जो अगर एक बार भूल करे तो फिर उसे सीख जाए, फिर दोबारा वो भूल ना करे, तब कहेंगे पुरुषार्थी। और बाबा पुरुषार्थी का अर्थ, ऊंचा अर्थ क्या सुनाते हैं? पुरुष अर्थ, जो आत्मा के लिए हितकारी हो वही पुरुषार्थ है, केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। पुरुष आत्मा के लिए अर्थ, उसके अर्थ जो पुरुषार्थ है वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जो खुद तो पुरुषार्थ करता है लेकिन औरों को भी कराता है, खाली खुद नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा देता है। खुद तो करते ही हैं, दूसरों को भी कराने की प्रेरणा दे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य यही है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो पढ़ता है और पढ़ाता है, जो यज्ञ करता है फिर कराता है, सब कुछ करता और कराता है, केवल खुद करता नहीं है कराता भी है। तो आज भी बाबा ने कहा उसको सतो प्रधान पुरुषार्थी कहेंगे। और भी कई बातें हैं, सुनते बाबा के माँ वाक्य। आज 10 मार्च 2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और फिर पढ़ानी भी है। हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। लोग पूछते ना, आप लोग क्या वहां करते हो, क्या करते हो? तो हम यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने की। हम केवल पढ़ते नहीं है, पढ़ाते भी हैं। तो मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। जो खुद करते हैं वो औरों से भी कराएंगे। तो क्या करेंगे? आप समान बनाएंगे, कल्याण करेंगे, कराएं और ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, ओम नमो शिवाय, भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो। ये भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन से सुना रहे हैं, तो हम उनके सम्मुख बैठे हैं जिस शिव की महिमा को भक्ति मार्ग में करते हैं। तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है, नमः करते तो नमस्कार करते ना, नमस्कार नमस्कार नमन करते हैं, सिर भी झुकाएंगे और हाथ भी जोड़ेंगे। अब तुमको नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, सारा दिन हाथ जोड़ते थोड़ी रहना है, बाबा को तो हमें याद करना है। नमः कभी नहीं करते। लौकिक में भी जो बच्चा पिता के सामने आएगा तो उसको केवल नमस्कार थोड़ी करेगा, हर वक्त उसको याद करता है। ये भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वो हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जान गए ना कैसे बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है। सत्युग है सुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तो तुम्हारी बुद्धि में है, क्या हमारी बुद्धि में है, कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य से देवता बनना है, यहाँ नहीं बनेंगे देवता, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। तो बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है कोई का ढीला होता है। हाँ, तीखा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा, ढीला करेंगे तो क्या पाएंगे। तो पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं, हाँ वो तो ढीला पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। खुद तो करते ही हैं पर दूसरों को भी कराते हैं, उसको कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थी। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा औरों का भी फायदा होगा। हाँ, जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं ना, फिर उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं तो मिलता है, उसमें थोड़ा सुख और बाकी तो दुख ही दुख है। चाहे कितना भी धन दान किया, चलो अगले जन्म में बहुत धनवान बन गया, पर जरूरी थोड़ी है कि उस धन से उसको बहुत सुख मिलेगा। बीमार है कोई, वो भी कोई कर्म का हिसाब किताब, तो धन होते हुए भी सुख नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसमें थोड़ा सुख बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग का सुख और कहाँ इस कलयुग का दुख, कितना अंतर है। कहाँ स्वर्ग का सुख और कहाँ ये दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण अर्पणम ईश्वर अर्पणम ऐसे कह करके दान पुण्य करते हैं, तो दूसरे जन्म में मिलता है। गाते भी हैं, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। तो तुम दान पुण्य करते हो तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको फिर ऐसा मिलता है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, क्योंकि दान भी जिसको करते हैं वो कोई पुण्य आत्मा थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ तो कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य तो होता ही नहीं है। करके चलो अल्प काल के लिए सुख मिलता है, दान का थोड़ा पुण्य बनेगा लेकिन अल्प काल का सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का ये मार्ग है। फिर दो बाबा ने ये टाइटल दिया था प्रदर्शनी के आगे लिख दो गेट वे टू हेवन, तो गेट वे टू हेवन यहाँ पर अपना जो म्यूजियम है उसमें भी लिखा हुआ है ना, हाँ उसमें भी ऊपर से लिखा हुआ है, जैसे एंटर करते हैं तो गेट के ऊपर लिखा गेट वे टू हेवन। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का ये मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता। बिगर कौड़ी खर्चा ये भी ऐड कर दो, बिना कोई एक कौड़ी खर्चे भी आप स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग का रास्ता तुमको दिखाया जाएगा। बिगर कौड़ी खर्चा तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, आजकल सब फ्री चाहते हैं तो कहेंगे आएंगे तो कोई टिकट तो नहीं देनी पड़ेगी, नहीं भाई फ्री है सब, सब फ्री है, प्रोग्राम में आओ जरूर आओ, कोई आपसे टिकट नहीं लेंगे। तो मनुष्य समझे क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है, क्या हम सीख रहे हैं बाबा से, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान, सब सहज करके बाबा देते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं, समझदार बनाते हैं बाबा हमें। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, कितने समझदार बन जाते हैं जो सारे विश्व पर राज्य करते हैं। ऐसा कोई होगा इतना सेंसिबल जो सारे विश्व पर राज्य करे? एक देश पर राज्य करने वाले के लिए भी कहेंगे बहुत सेंसिबल चाहिए। अगर वो अनपढ़ होगा और वो राज्य करेगा तो क्या हालत होगी, इसलिए बहुत समझदार चाहिए जो एक देश पर भी राज्य करे। अब सारे विश्व पर राज्य करना ये तो उसके लिए तो कितना समझदार व्यक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वही श्री नारायण बनता है, पर बचपन में उसका जो कुछ दिखाते बाबा कहते क्या क्या लिख दिया है। अब वो है झूठे कलंक, वो तो कितना सेंसिबल होगा, वो क्यों मक्खन चोरी करेगा, वो क्यों किसके कपड़े चुराएगा, ये तो कितने कलंक लगा दिए ना। तो बाबा कहते वो है झूठे कलंक। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वो मक्खन चुराता था, तो फिर मक्खन जब चुराता था तो सब गोपियां जाती थी यशोदा के पास कि तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में आके मक्खन चुराया, तो माँ फिर यशोदा को लगता था ये मेरा बेटा घर में क्या कमी है तो तुम दूसरों के घर का मक्खन चुराते हो। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तो फिर माँ कहती अच्छा मुंह खोलो, तुमने माखन नहीं खाया, क्योंकि खाया होगा तो मुंह को तो लगा होगा जरूर। तो वो मुंह खोलता है तो और माँ क्या देखती है, त्रिलोक देखती है। त्रिलोक श्री कृष्ण के मुंह में तीनों लोक देखती है वो तो हैरान हो जाती है, हाँ माखन क्या खाया। लेकिन बाबा माखन का अर्थ बताते हैं, तो श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो। फिर अंत में वो आता है ना गीत में आता है मैंने ही माखन खायो, तो कौन सा माखन खाता है श्री कृष्ण, सारे विश्व का माखन। वो दो बिल्ले लड़ते रहेंगे और श्री कृष्ण बीच में सारी दुनिया का माखन खा जाएगा। तो श्री कृष्ण कहता है मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं, मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने माखन, हाँ भाई किसने खाया, किसने खाया, खाया या नहीं खाया, क्या कहेंगे खाया या नहीं खाया, बिल्कुल खाया, हाँ मैंने ही माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। अब छोटा बच्चा होता है उसको तो दूध पिलाया जाता है, मक्खन थोड़ी पिलाया जाता है, छोटा बच्चा तो दूध पीता है। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि जो भी दिखाते हैं ऐसी कोई बातें है नहीं। कैसे क्या क्या दिखा दे, कहाँ चढ़ करके वो मक्खन की वो मटकी फोड़ता, ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। हाँ भले श्री कृष्ण की भी बहुत महिमा है लेकिन ऊंचे से ऊंचा तो शिव बाबा है, उनकी महिमा तो और उसके समान तो और किसी की नहीं हो सकती। दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है, भक्त माला भी गाई जाती है। है तो सब पतित, द्वापर युग के बाद फिर भक्ति शुरू होती है तो भक्त माला गाई जाती है, भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम है और मेल्स में नारद का मुख्य नाम गाया जाता है। हम नारद को क्यों कहते हैं भक्तों में सबसे मेज में ऊंचा, क्योंकि हर वक्त नारायण 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 नारायण, हर वक्त उसको वो नारायण को ही सिमरता था। और मीरा फिर श्री कृष्ण तो हर वक्त श्री कृष्ण का ही नाम लेती थी, हर बात में श्री कृष्ण का नाम लेती थी। तो बाबा कहते हैं ये नंबर वन भक्त। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सब पतित है परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है, इसीलिए भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो एक है भक्त माला और दूसरी है ज्ञान की माला। अब हमारी ब्राह्मणों की कौन सी है, ज्ञान की माला। भक्त माला से फिर रुद्र माला के बने हैं, भक्ति बहुत की तो फिर ज्ञान माला में आए, फिर रुद्र माला में जाएंगे, फिर वैजंती माला में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं भक्त माला से फिर रुद्र माला के बने हैं, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की, है ना, रुद्र माला है संगम युग की। ये राज भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा के सामने बैठते थे तो सचमुच रोमांच खड़े हो जाते थे। अहो सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। अभी क्या कहेंगे, सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली, एक है केवल भाग्यशाली, फिर आता है सौभाग्यशाली, हाँ फिर हजार लाख करोड़ जो भी कहो, लेकिन पद्मा पदम तो वो तो गिनती से भी बाहर भाग्यशाली बनते हैं। तो 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है, तो बाप कहते हैं वो है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं, कटारी माने तलवार, तो ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वो तो है हिंसक चीजें, मनुष्यों को ये पता नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है, क्योंकि वो समझते हैं ना श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, पर वो तो फिर हिंसक दिखाते हैं, गले काटे तो ये तो हिंसा हो गई। तो मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है, स्व का दर्शन चक्र में, ये है स्वदर्शन चक्र। तुमको बाबा कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, इतना बड़ा टाइटल बाबा बच्चों को देते हैं। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो, तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी धर्म होता है, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर उसको बाबा कहते सेमी स्वर्ग है त्रेता, पर है तो स्वर्ग ना, तो दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबर वार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है और तुम पढ़कर होशियार हुए हो, तो अब तुम्हारा क्या फर्ज है? हाँ, क्या फर्ज है? बाबा कहते अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? पहले तो ब्रह्मा मुख वंशावली बनना पड़ेगा, बाबा जो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा द्वारा वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, फिर औरों को सुनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बनी है तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा तो शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। हम वर्षा ले रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, उतरना मुश्किल नहीं है, चढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल हाँ लिफ्ट पे, लिफ्ट जो होती है ना, तो उसमें भी लिखा रहता है वहाँ लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन, ऐसे कई बिल्डिंग्स में लिखा रहता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो अगर चढ़ने के लिए भी लिफ्ट लेवे, फिर चढ़ने के लिए तो लिफ्ट है पर नीचे उतरने के लिए भी लेवे तो फिर टू मच हो जाता है। इसीलिए लिफ्ट नीचे उतरने के लिए नहीं है, सीढ़ी से उतरो, पर हाँ चढ़ने के लिए है। तो सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं, मान लो लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं? हाथ दे करके ऐसे चढ़ते हैं। यहाँ भी आते हैं ना, हम तो वहीं रहते हैं ना, शांति स्तंभ के सामने हम रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, तो हम देखते हैं कई बहनें इतना वजन उठा करके सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करें। हम कहते हैं क्यों चढ़ रही हो इतना वजन उठाकर, सामने सामने लिफ्ट है। कहते अच्छा यहाँ लिफ्ट भी है, उनको कईयों को पता ही नहीं कि यहाँ लिफ्ट है। फिर उनको कहते हैं यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट में जाओ। अच्छा, खुश हो जाती है कि लिफ्ट है, नहीं तो इतना उठाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं परंतु लिफ्ट भी है, अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है, लिफ्ट में बैठे वह बटन दबाया पहुंच गए सेकंड में, तो सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है, तो मोस्ट बिलविड बाबा मिला है। तो बाबा तो हमारी चढ़ती कला ही कहेंगे ना, उड़ती कला भी, चढ़ती कला से भी आगे उड़ती कला। मोस्ट बिलविड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं। परंतु वो कौन है? हाँ, वो माशूक तो है सबका, सब उनको याद करते हैं, परंतु वो कौन है ये कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी कह देने से क्या क्या समझ में आएगा? तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। उनकी आत्मा पर ये नाम है शिव, बाकी आत्माएं तो अलग अलग है, और हर आत्मा को अपने हर जन्म में अलग नाम मिलता है। हाँ, आत्मा को तो नहीं मिलता, आत्मा तो आत्मा ही है, पर शरीर पर नाम पड़ता। पूर्व जन्म में आपके शरीर पर क्या नाम होगा आपको याद भी नहीं होगा, अगले जन्म में हमारा कौन सा शरीर होगा और क्या नाम होगा थोड़ी पता हमें, तो अभी तो खाली इसी जन्म के ही नाम का पता है। तो बाबा कहते हैं एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए, शिव के कितने नाम रख दिए, कहते सहस्त्र नाम है। सहस्त्र माना 1000, कम से कम 1000, 1000 से भी ज्यादा नाम होंगे, सहस्त्र नाम। तो मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो, जितने भी शिव के मंदिर के अलग अलग नाम रखे हैं, बाबा कहते एक एक का अर्थ है, बिना अर्थ के नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते अर्थ है, अभी तुम वो अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर है, गांधीवी सेंटर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है बाबूरीनाथ। वैसे उस पर तो लिखा है बाबुलनाथ, तो बाबा उसको बाबूरीनाथ कहते हैं, तो माना कांटा है, तो बाबूरी कांटे को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य ये है कि तुम आत्माओं का बाप एक है। अब ये रेजगारी बातें सुनाई, फिर बाबा सार बताते हैं कि मुख्य बात ये है कि हम आत्माओं का बाप एक है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, अब बाबा हंसी की बात कर रहे हैं, भारत में ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना, लक्ष्मी नारायण चीन के नहीं है। चीन के अगर होते लक्ष्मी नारायण तो शक्ल और ही होती। आते ना यहाँ चाइनीज आते हैं, वियतनाम के आते हैं, और भी कई ऐसे साउथ कोरिया के आते हैं, तो उनके फीचर अलग होते हैं। तो वो कहते हैं चीनी जो लोग कहते हैं ना, उनकी आंखें बादामी जैसे, जैसे बादाम होता है ना ऐसे, तो ऐसी आंखें होती है, और भारतवासियों की आंखें अलग प्रकार की होती है। तो चीन के होते तो शक्ल और ही होती, यही है ही भारत के। लक्ष्मी नारायण का जो ओरिजिनल आप चेहरा देखेंगे, फीचर्स, वो तो भारत के ही फीचर्स है। लेकिन हाँ, कई बार वो और देश वाले बनाते लक्ष्मी नारायण, तो उनके फीचर्स बना देते हैं उसमें। चीन के होते तो शक्ल ही और होती, ये है ही भारत के। तो पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है, आत्मा ही सांवरी बनती है, आत्मा ही गोरी बनती है, तो मिसाल सारा इनके ऊपर है। कैसे यही श्री राधे श्री कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण, फिर सुंदर है फिर श्याम बनते हैं, तो मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है, बाबा बच्चों के लिए कहते हैं। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। अब सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सन्यासी भी तो चेंज करते हैं ना, सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुंडवा देते, माथा मुंड लिया, गेरू कपड़ा पहन लिया, चलो हो गया सन्यासी। तुम तो ये ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। बाबा हमसे सिर नहीं मुंडवाते, ऐसे नहीं कहते सिर मुंडवाओ या गेरू कपड़े पहनो। तो इसीलिए ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमोप्रधान है, तो प्रकृति तमोप्रधान है तो सबके देखो शरीर भी कैसे, तो ये धरती भी तमोप्रधान है, नुकसान कारक है, आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं। अभी सुनो बाबा विनाश की बात सुनाएंगे, सुनाते हैं कितना नुकसान कारक है। धरती भी तमोप्रधान है, सब तमोप्रधान है, सब नुकसान कारक है, आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, परम दुख, केवल दुख नहीं, हल्का दुख नहीं, परम दुख। वहां फिर परम सुख होगा, तो बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। पहले सब विनाश हो जाएगा, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, उतना ले लो, क्योंकि अभी समय है, बाद में बाबा कहते हैं कुछ नहीं कर सकेंगे, तो अभी ले लो। अभी तुम पुरुषार्थ का जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो बाबा को नहीं तो कहना पड़ता, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। अंडरलाइन, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, उस अंत में ये कहना पड़ेगा, बाबा आया और हमने कुछ नहीं लिया, तो पश्चाताप ही हुआ ना। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, लेकिन टू लेट हो गया। इसलिए बाबा जो नहीं आते, कल भी बाबा ने पूछा ना मुरली में, कल जो नहीं है वो हाथ उठाए, तो बाबा कहते हैं इसलिए नयों को बाबा क्या कहते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। कोई बात नहीं, लेट आए हो परंतु टू लेट नहीं आए हो, क्योंकि अभी भी मार्जिन है पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने का, आगे और आगे आएंगे तो टू लेट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये लिखा हुआ है कि भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। अब उठे तो उस समय तो आग लगी हुई होती है, तो क्या करें, हाय हाय करना पड़े, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में है हाय हाय, कलयुग में है हाय हाय, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। भविष्यवाणी बाबा कर रहे हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। बाबा ने कहा एक मुरली में कहा, अभी तो फिर भी रिटेल मरते हैं, रिटेल मौत है, आखिर बाद में होलसेल मौत होगी, तो होलसेल में तो कोई एक दो की बात नहीं होती, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा, बीच में ये है संगम युग, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं, क्या है युक्ति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है, मुझे याद करो। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है, बाबा हमारे लिए इतना सहज कर देते, सबके आगे माथा भी नहीं टेकना, मंदिर में जाते ना माथा टेकते हैं और हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, बाबा तो कहते तुमको कुछ भी नहीं करना। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है, अब बाबा देखो कितनी बड़ी ऊंची बात सुनाते हैं। अब बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना, अब बाबा के बच्चे आते हैं बाबा के सामने आकर बाबा के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो बाबा तो कहते थे अभी ये बाबा का ज्ञानी तो आत्मा बच्चा है, फिर भी अगर वो हाथ जोड़ता है माना अभी तक भगत है, अभी तक भगत है, क्योंकि भगत भक्त लोग ही हाथ जोड़ते हैं। तो बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना, देखो बाबा क्या कहते हैं, न तो तुम आत्मा को हाथ है, अब आत्मा शरीर में है तब ये शरीर को हाथ है, तो न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को हाथ है। लेकिन शिव बाबा भी तो एक आत्मा है ना, बिंदी है, उसको अपना हाथ तो है नहीं, आत्मा को भी अपना हाथ तो है नहीं, ऐसे थोड़ी आत्मा को हाथ निकल आते, लेकिन हाथ तो शरीर को है। तो न बाबा को हाथ है न तुम आत्मा को हाथ है, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? ये तो शरीर का हाथ है ना, आत्मा को तो हाथ है नहीं, फिर शरीर, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, एक भी चिन्ह बाबा के तो नहीं होना चाहिए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? कई ऐसे बच्चे आते थे लेकिन आधे भक्त, तो भावना तो होती थी ना बाबा के सामने, भले बाबा के बच्चे भी कहलाते फिर भी बाबा के आगे हाथ जोड़ते थे, तो बाबा कहते हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब लौकिक में भी होता है ना, घर में बैठे हैं, पिताजी घर में आ गया तो थोड़ी सारा टाइम बच्चे हाथ ही जोड़ते रहेंगे पिता के आगे, तो सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है, हाथ जोड़ना अलग बात है, याद करना अलग बात है। तो याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है, मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, है ना, सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं एक दो से? बाबा के ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? पहले दृष्टि से मिलते हैं, दृष्टि से आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हैं, फिर ओम शांति कहते हैं, ऐसे ना। तो बाबा कहते हैं तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, ये शिव बाबा का तो तन नहीं है, इसके इसकी इनको इनके शरीर को हाथ है, परंतु शिव बाबा को तो अपना हाथ है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। अब ये भी जरूरी है, कोई हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है, रिस्पेक्ट के खातिर हम उनको हाथ जोड़ते हैं, वो जोड़ना ही चाहिए अगर वो हाथ जोड़ता है तो। तो बाबा कहते हैं परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है, तुमको तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, क्या इस कलयुगी दुनिया से नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है, जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी का भी कितना, भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हो उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम, मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है, माथा तो बेचारे मारते हैं, वो तो मोक्ष के लिए माथा मारते हैं, मुक्ति के लिए, पर सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं है। फिर बाबा कहते हैं हाँ मुक्ति मिलती है, क्या मिलती है उनको? मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। आधा कल्प सन्यासी के रूप मतलब सन्यासी बने तो फिर घर बार छोड़ा, मुक्ति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं तो घर जाते हैं, और आधा कल्प के लिए घर में बैठ जाते हैं, मुक्ति धाम शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में ही आती है, भले द्वापुर में भी वो आत्मा आई, परंतु द्वापुर में भी बाहर और सब आत्माओं की रजो प्रधान अवस्था होगी, जो देवताएं द्वापुर में आए उनकी रजो प्रधान अवस्था होगी, परंतु जो आत्मा सबसे पहले आई द्वापुर युग में आई उसकी सतो प्रधान अवस्था होगी। तो बाबा कहते हैं फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, उस आत्मा की उस समय जीवन मुक्त स्थिति है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। तो पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, बाबा रास क्या बताते हैं, मनुष्य बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि अगर शरीर में बहुत मोह है, बहुत मोह है, चाहे किसी और में भी मोह है, तो उस समय आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाती है, कष्ट होता है। हाँ, जैसे टाइट कपड़े पहने हो और वो टाइट कपड़े आपको उतारने हैं तो कितना कष्ट होता होता है ना, थोड़ा तो होता ही है। अगर टाइट आजकल वो पहले वो चूड़ीदार पैजामा पहनते थे, इतना कष्ट होता था उतारने, धीरे धीरे उतारना पड़ता है, तो कष्ट होता है शरीर को। तो बाबा कहते हैं जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। जैसे काशी करवट खाते हैं क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है, तो पहले काशी करवट खाते थे। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, सच्ची काशी करवट बाबा कहते तुम खाते हो, कैसे तो हाँ तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, पर ये कोई गला काट के वो बलि नहीं चढ़ते हैं, हम कौन सी बलि चढ़ते हैं, बाबा पर समर्पित होते हैं। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में फिर वो बातें चलती है बलि चढ़ने की, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते, भले बलि भी चढ़े, अपना सिर भी काट के शिव के आगे रखा, लेकिन बाबा कहते कोई वापस घर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, क्या होता है, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू हो जाता है, क्योंकि घर तो वापस जा नहीं सकती आत्मा। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है, तो बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, पति तो नहीं चलेंगे, वो तो फिर सजा खाकर बराती बन के बाद में आएंगे पीछे, परंतु साथ किनको ले जाएंगे, जो बच्चे बाप समान होंगे, तो पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी, आत्मा की ज्योति जग जाएगी। अब बाबा एक बहुत सुंदर राज बताते हैं, शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं, स्त्री शादी का वो प्रोसेशन निकलता है ना, तो आगे माताएं होती है और उनके सिर पर वो मटकी होती है, वो मटकी में जैसे ज्योति जगती है, और हो सकता है वो जो वधु है वो भी, उसको भी सिर पर मटकी रखते होंगे और ज्योति जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं। अब ये रस्म भी यहाँ भारत में ही है, स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते हैं, पति के सिर पर नहीं वो ज्योति जगाते हैं। क्यों? बाबा ने उसका राज समझाया, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं, पति तो परमेश्वर है, वो तो ईश्वर है, अब वो ईश्वर को थोड़ी कोई ज्योति उसके ऊपर रखेंगे, ईश्वर पर फिर ज्योति कैसे जगाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योति जगी हुई है, शिव बाबा की तो ज्योति जगी हुई है, शिव बाबा के सिर पर तो कोई ज्योति नहीं जगाएंगे, वो तो है ही जागती ज्योति, तो जागती ज्योति के सिर पर थोड़ी ज्योति जगाएंगे, लेकिन जिसकी ज्योति बुझी हुई है उसके सिर पर जगाएंगे, ज्योति जलाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योति जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं ना, क्षमा, तो उनकी तो ज्योति सदा जगी है। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, ब्रह्म समाजियों के बहुत मंदिर है, उनमें उस मंदिर में जाएंगे ना, केवल एक ज्योति दिया है बस, और वो भी अंदर जैसे वो शीशे के वो उसमें है, तो अंदर में वो ध्यान देते रहते हैं कि वो ज्योति बुझे नहीं, 24 घंटा ज्योति जगती रहती है। तो ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं, कई ऐसे भी समझते हैं, मान्यता है कि छोटी ज्योति मान आत्मा छोटी ज्योति है और परमात्मा बड़ी ज्योति है, तो ये छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी, बुदबुदा सागर में समा जाएगा, तो बड़ी ज्योति में छोटी ज्योति समा जाएगी। अनेक मते हैं, बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयां यहाँ के लिए होती है, यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है, फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, राजयोग भगवान ने सिखाया, फिर महाभारत युद्ध हुआ, फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा उस लड़ाई में, सब कुछ खत्म हो गया। पांडवों के साथ फिर कुत्ता दिखाते, युधिष्ठिर के साथ फिर कुत्ता दिखाते, कहते ये धर्मराज का रूप है, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेस बनाता हूँ, ये तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं, तो अब तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलविड माशूक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं, तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते मैं आया हूँ, तो मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। हाँ समझे, लौकिक के साथ कैसे हमें रहना है, बाबा बताएंगे कैसे तोड़ निभाओ, सबसे अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, राय ली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी छूटी, हाँ वो फिर बाबा की जिम्मेदारी हो गई, बड़ों के कहने पर चले तो आपकी जिम्मेदारी छूटी, बड़ों की जिम्मेदारी, राय ली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है, भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूरत भव। सदा सफलता मूरत कैसे बनेंगे, जब सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनेंगे, तो सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं, वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है, कहाँ से मिलेगा सुख मिलेगा, कहाँ से शांति मिलेगी, तो अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है, तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है ना, आजकल तो भारत में भी है, होते ना मॉल्स होते हैं, उसमें कितने तीन तीन चार चार मंजिला के मॉल होते, इतने बड़े बड़े सब कुछ मिलता है उसमें। तो बाबा कहते हैं तो जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। आपके पास जो आत्मा है, शांति चाहिए तो लो शांति, सुख चाहिए तो लो सुख, फिर उसी अनुसार बाबा का ज्ञान देना। खुशी चाहिए तो लो खुशी कैसे मिलेगी, तो बाबा कहते ऐसे, हाँ ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति ना हो। जहाँ सहन करना है वहां सहन करो, जहाँ परिस्थिति है तो सामना करो, परिस्थिति को सहन नहीं करो सामना करो। तो बाबा कहते ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की शक्ति न हो, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। इस पर बहुत बड़ा क्लास हो सकता है। स्लोगन, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। उसके लिए आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं, कईयों की ऐसी भाषा है क्या कि हमसे सत्य, हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, गुस्सा आता है ना, भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझे मेरे से असत्य सहन नहीं होता, मेरे से झूठ सहन नहीं होता, इसीलिए फिर वो जोश दिखाते, गुस्सा दिखाते, तो ये जोश आ जाता है। लेकिन यदि वो असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वो जोश भी तो असत्य है। जोश कौन सा असत्य है, वो भी तो असत्य है। असत्य को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी जानते हैं कल 11 तारीख है और 11 तारीख अर्थात दादी गुलजार का अव्यक्ति दिवस, तो राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की चतुर्थ पुण्य स्मृति दिवस है कल। तो शांति वन में कल प्रोग्राम जो होना है वो आप सबको सुना देते हैं। तो यहाँ पर भी पहले मुरली होगी, फिर भोग लगेगा, यहाँ सवेरे भोग लगेगा और उसके बाद नीचे भोग बाद में लगेगा, पहले मुरली होगी और फिर 8:15 बजे सभी अव्यक्त लोक में जाएंगे। रतन मोहिनी दादी जी तथा सभी वरिष्ठ भाई बहने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे वहाँ अव्यक्त लोक में जाकर, और फिर वहाँ ही मधुरवाणी ग्रुप गीत गाएगा, फिर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर दादी जी के संग के संस्मरण 2-2 मिनट सुनाए जाएंगे। दादी जी, मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी, जयंती दीदी और आशा दीदी, ये अव्यक्त लोक के पास ही ये सब होगा। फिर 8:30 बजे से 8:30 बजे सभी को नाश्ता मिलेगा नीचे, और यहाँ भी नाश्ता करेंगे भोग के बाद नाश्ता। फिर नीचे 10 बजे से 12:15 बजे तक डायमंड हॉल में सभी एकत्रित होंगे, जहाँ दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे, गुलजार दादी के संस्मरण सुनाएंगे जयंती दीदी, आशा दीदी, करुणा भाई और मुन्नी दीदी, ये दादी गुलजार के संस्मरण सुनाएंगे। फिर 12:15 बजे मधुरवाणी ग्रुप द्वारा गीत होगा। फिर 12:00 बजे बाप दादा तथा दादी जी को मोहिनी दीदी जी भोग लगाएंगे, तत्पश्चात संदेश सुनाया जाएगा और 12:30 बजे संदेश सुनने के बाद सभी बड़े डाइनिंग हॉल में भोजन के लिए जाएंगे। डबल विदेशी भी नीचे जाएंगे तो डबल विदेशी मनमोहिनी वन में दिव्य लोक में भोजन के लिए जाएंगे। मनमोहिनी वन में दिव्य लोक में भोजन करेंगे डबल विदेशी, ब्रह्मा भोजन करेंगे। फिर शाम को 6 से 8 डायमंड हॉल में चक्रधारी दीदी जी, शुक्ला दीदी जी और मृत्युंजय भाई तथा अन्य भाई बहनों द्वारा दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे। ये नीचे का प्रोग्राम है कल का। पर यहाँ तो बाबा को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद दिन में तो जैसे भोजन होता है वो तो होता ही, नाश्ता वगैरह होगा। बाकी आप सबको पता होगा, कल से समाचार तो सुन ही रहे होंगे कि हमारे बाबा के अति स्नेही और लाडले जयप्रकाश भाई, जो दिल्ली सेवाओं के विकास और आधार स्तंभ थे, दिल्ली की बहुत सेवाएं उन्होंने की, तो जयप्रकाश भाई जी का पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक न होने कारण बीमार थे और बहुत बहुत हड्डी सेवा करते थे। बाबा मम्मा की भी उन्होंने पालना ली थी। आपने कल 9 मार्च को दोपहर 3:30 बजे अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद ली। आपकी सेवाएं बेहद की और कई स्थानों पर थी। वर्तमान समय आप दिल्ली सत्कार भवन संभालते थे। भारत के कई भाई बहने जो दिल्ली जाते हैं वाया दिल्ली, तो थोड़ा रुकना होता है उनको, जब तक उनको दूसरी ट्रेन मिले तो वो सत्कार भवन में भोजन करने जाते हैं। तो वर्तमान समय आप दिल्ली सत्कार भवन संभालते थे। आज 10 मार्च को 11:30 बजे आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी विशेष महान आत्मा को हम सभी योग में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उस आत्मा के प्रति जयप्रकाश भाई बहुत ही पुराने बाबा मम्मा की पालना लिए हुए आत्मा थी और बहुत दिल्ली में सेवाएं की उन्होंने। अभी हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। ओम शांति।